धर्मराज जी सिंहासन पर बैठा आप है। बोला मारकंडे ऋषि जी क्या बात आप फरमाए। बोला नहीं महाराज मैं तो नहीं पूछ रही हूँ क्या की चर्चा कारण लाग रही है। बोला बड़ी बड़ी सतियां हैं जैसे अनुसुईया है सीता है और बहुत सी सतियां हैं उनकी चर्चा चल रही है। जति पुरुषों की चर्चा चल रही है और देश के वीर महान पुरुषों की चर्चा चल रही है। तो बोले महाराज ये क्या की जति सती मैं बताना था ने। बोले मारकंडे ऋषि जी आप फरमाए। तो मारकंडे ऋषि कहते हैं और सारे देवतागण है वो सुनते हैं कहते हैं कि महाराज सतयुग की बात है कि सालव देश में राजा दिमत्सेन राज क्रिया करता। रानी का नाम शेव्यावती। राजा रानी की जब उम्र 40 साल की हो जाती है तो रानी की कुख से कोई औलाद नहीं होती है। और ये ईश्वर की कोई कुदरत है कि त्रेता द्वापर सतयुग में देख लियो और कलयुग में देख लियो बोलाई ये परोपकारी दयावान दया दातारी आदमी होगा। मैं कह औलाद कमजल में आकर यार जल में तो कोई आंख पाड़ता पाड़ता एक देर जल में जुको कदे तो मैं कह ऊपर न हो जाए कदे मैं कह नीचल हो जाए। आर कहने का मतलब ये है कि हे भगवान गिरधारी क्यों भूल भई नाकारी। पर उपकारी मानस के घर बेल वंश की हार देखी। पापी नीच कसाई के घर ते बालका की डार देखी। ये भगवान या की बात है। तो एक रोज क्या होता है कि रानी के महल में ख्याल आ जाता है कि ये फौज आर्मी से ना पलटन ये दास दासी ये नौकर चाकर किस काम के। रवि शशि दीपक हो घर में सुत बिन नहीं उजाला हो। लाखों दुश्मन क्या कर सकते जिसका राम रुखाड़ा हो। सूर्य और चंद्रमा का दुनियादारी का दिल में चढ़वासा नहीं हुई है। तू बावड़ी जगह का दस दस समय रहे पर तो क्यों ना हाल करेंगे। रानी कड़े लगी अरे तेरे से भी पति देव मेरा चित्त भंग रखे से मुंह ममता में फंस के रानी तू इतनी तंग से मुंह ममता में
भजन भाव रानी आ
भगवान के भजन कर वो ही बेड़ा पार करेंगे। इस प्रकार से कह करके वापिस दरबार में चला जाता है। राजा को भी बड़ा दुख होता है और राजा क्या करता है कि बड़े बड़े पंडितों को बुलाता है और पुत्रेष्टि यज्ञ कराता है। पुत्रेष्टि यज्ञ कराता है तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के बाद में 9 महीने रानी की कुख से एक लड़का उत्पन्न हो जाता है जिसका पंडितों ने वेद विधि की रीति से उसका नाम रख दिया सत्यवान। वो सत्यवान 6 महीना का हुआ 12 महीना का सा लग गया 12 महीना का सा हुआ 6 वर्ष का सा लग गया। क्यों भाई राजा के घर क्या की कमी है? तो क्या हुआ कि जब उस सत्यवान की उम्र 10 साल की हो जाती है तो उधर राजा रानी की उम्र 50-55 साल की हो जाती है। कर्म जोग से राजा रानी दोनों अच्छा सांधा हो जाए आंधा हो जाए तो मंत्री आमर वजीरा में सबसे जो प्रधानमंत्री था उसका नाम सुन रहा है करियो कई मेरे वर्गा गर्दस की बोले माजा। लेकिन 2-4 भला आदमी भी है वह मन में सोची कह रहे अन्याय हो दुष्ट हो अन्याय करो है। वो जाकर के आधी रात के महल का दरवाजा खड़खड़ाया। राजा ने कहा तुम्हारा इस समय आना कैसे हुआ? बोला महाराज के आया रुया चोंड राय ने मीटिंग में प्रस्ताव रखा कि तुमको मारेंगे। तो वो तो छत्री था रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन ना जाए। बोला मैं ये बात सुनना नहीं चाहता जो आज विश्वासघात करते हैं कल मार भी सकते हैं हमारे मरने का कोई धोखा नहीं है लेकिन लड़का सत्यवान मारा जाएगा मेरा वंशी खत्म हो जाएगा। मुझे इस मालोजर की इस महलों की कोई जरूरत नहीं है तुम रखो और मुझे इस नगरी से बाहर कर दो। दिन पलटा दशा पलटी पलटा हाथ कबाण के काबा लूटी गोप का के वही अर्जन वही बाण। सज्जनों जब आदमी का दिन मान पलट जाता है तन के वस्त्र भी बैरी हो जाते हैं। उस समय तुलसीदास जी ने लिखा है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल परखिए चाले। आपत्ति काल में धैर्य से मुकाबला करना चाहिए ईश्वर उसमें जरूर सफलता देंगे। तो वो लड़का सत्यवान 10 साल की उम्र तीनों माता पिता और लड़के सत्यवान को नगरी से बाहर कर दिया जाता है। चाल्या थक्या एक खोड़ में पूछ गया बड़े दिन निकल आया और वो ऐसे खोड़ में पूछ गया जिसने 3 कोस इन गांव को न्या 2 कोस इन गांव को न्या। लड़का सत्यवान उम्र जिसकी 10 साल वो नादान लड़का वो उस समय से माँ बाप की सेवा करता है। माँ बाप की सेवा से वो 10 साल की उम्र से माँ बाप की सेवा करता है और मरते वक्त तक सेवा करता है जीवन पर्यंत। और माँ बाप की सेवा करने से उसको क्या फल मिलता है? उसको पुत्र सुपात्र नार सती धन भाग बिना ना मिलती गेंदा और गुलाब चमेली बाग बिना ना मिलती। ये तो बागा में मिला करे बेटा सपूत सती लुगाई धन वैभव ये तकदीरा से मिले हैं। न्यू तो आपने सारा कई बापड़ी वीरवानी है लेकिन सती और थे वो तकदीरा से मिला करे। तो क्या होता है कि माँ बाप की दुआ से उसको कैसी औरत मिलती है और उस औरत के जरिए से उसको किस प्रकार भगवान के दर्शन होते हैं। भोरी शंकर भगवान की और वो उसने सोचा कि यहाँ पर जंगल बियाबान में माँ बाप का पालन पोषण कैसे हो पिता पर पूत देश पर घोड़ा गणा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। वो राजा का लड़का था उसने सोचा कि यहाँ पर कोई दास दासी नहीं है जो माँ बाप की सेवा कर सके तो इस जंगल बियाबान के अगर लकड़ी काट के भारिया बना के पास वाले शहर में बेचाया करूं तो मैं माँ बाप का पालन पोषण कर सकता हूँ। ये विचार करके वो पास वाले शहर में चला जाए और डूंगरगढ़ जाल का शहर लगा था नजदीक और लाले के पास जाके खड़ा हो जाए। वो राजकुमार लाला नाम सेठ का है और कहता है लाला तू मेरे डोरी और कुल्हाड़ा उधार में दे दे तेरा लकड़ी बेच के पीछा अदा कर दूंगा। लेकिन लाले ने कोई दया नहीं आवे है और वो राजकुमार था सच्ची दरी की ड्रेस पहना जिसकी कीमत 60,000 रुपया लगे। लाले का कपड़ा ने देख के मन चाल जाए और बोला तेरा ये कपड़ा अडाने धर दे गिरवी धर दे और फिर ले जा सके। बोला रे लाला कभी तू मेरे को सलाम किया करता था लेकिन मेरा दिन मान पलट गया इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। बोला संघर्ष ना करे दूसरे ग्राहक नाम चाल पड़े डू। जब वो तन का वस्त्र गिरवी रखता है तब उसको पिछली बातें याद आती है और लाले से क्या कहता है Thank you.
नौकरोड़ी की लगले आज
नौ करोड़ की लाल आज माटी में जर लिए है लाला कभी नौ करोड़ की लाल काया करते थे थोड़ी दया कर लेकिन कोई दया नहीं आवे सबने जरूरत पेट भाड़ेगी अरे तू एक डोरी और कुलाड़ेगी हम भी भर ले। लेकिन लल्ले ने कोई दया नहीं आवे तन का वस्त्र गिरवी धर दे और वो राजकुमार अब वस्त्र गए गिरवी धरने के बाद में बिना सवारी गला गंजी और जांघिया पर आ दे। अब वो राजा का लड़का राजकुमार से लकड़हारा बन जाता है और मन में धैर्य धारण कर लेता है कि अब मैं माँ बाप का पालन पोषण आसानी से कर लूंगा और नगरी में उससे कोई बातें नहीं करता है। बाहर जाके कहता है कि आजा मेरे दोस्त अब तेरे से मेरा रोजगार चलेगा और मन में धैर्य धारण करता है कि कोई बात नहीं ये दिनमान का चक्कर है। अब वो कहता है कि आजा कुलाड़े मेरे दोस्त अब तेरे से मेरा रोजगार चलेगा। तेरे से मेरा रोजगार चलेगा।
Thank you.
چڑی ہوا میں مانس کے دشمن بھی پیارے ہو جا, بگڑی میں خود ماز آئے بھائی بھی نارے ہو جا. اس پرکار سے دھیرج باندھ لیتا ہے کہ کوئی بات نہیں, جب آدمی کا دن مان پلٹ جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. وہ اب کیا کرتا ہے کہ روزانہ جنگل بھی آبان کی لکڑی کاٹے بھاری آبند ہے پاس والا شہر میں بیچا ہوا, اور اس پرکار سے ماں باپ کا پالن پوشن کرے آندھا آندھی ماں باپ. اس پرکار سے سیوا کرتے کرتے 10 سال بیت جاتے ہیں, اور ادھر مگدھ دیش میں راجا اشوپتی راج کریا کرتا ہے, بیکے بھی کوئی اولاد کو نہیں. تو اس نے گایتری منتر کے جاپ کروائے تو رانی کی کوک سے 9 مہینے ایک لڑکی اتپن ہوتی ہے, جس کا پنڈتوں نے وید ودھی کی ریتی سے اس کا نام رکھا ساوتری. وہ ساوتری ماں باپ کے گھر کیا کی کمی کو نہ پڑھ لکھ کی اتنی ودوان ہوگی کہ ورتمان کال تینوں کالا کی باتیں نہ جاننے والی ہوگی, جوتش میں اتنی ماہر ہوگی. جب وہ کنیا 17-18 سال کی ہو جاتی ہے تو راجا نے سوچا کہ کنیا کے لائق بر ڈھونڈنا چاہیے. تو سارے ملک کا سارے دیش کا رکھا ہے, بولے کیا بتاؤں صاحب, بائیلی کو بیاہ کرا تو نہیں کرنا چاہیے یار, میرے یار تر مورکھ بتاؤں لگ گیا انہوں تو بیاہ مت کرے. بولے کیا بتائی جا گر ہو چکا تھا مورکھ, ارے مورکھ کٹے گا دس کا مورکھ لگ گیا دس دن سے پڑھنا گیا ہے, لیکن وہ مورکھ بتاوا بھی نہیں. ارے وہ کنیا کی شادی کرے وہ بتاؤں نہیں, اتنا چینی دیواؤں نہیں, وہ مورکھ بتاؤں لگ رہا ہے. سجنوں دنیا کے اندر من میں مورکھ دکھی جون میں کوئی کو نہیں, مورکھ آدمی تو دنیا میں چار ہی ہوئے, پانچواں مورکھ کوئی نہیں ہوتا ہے. گنگا اور باوڑا آدمی ہو جائے بٹھا کو کھا لینا بھائی, چھوڑ 6 روٹ کا ہے پاڑی لے, وہ بھی آپ کی جان میں فلم چاہتے رہے, سہ گڑوان ہو یا پھر کوئی کی پاولی کم سال ہے اور کوئی کی کیوں زیادہ سال ہے, لیکن عقل میں ساری دنیا بھرپور ہوئی ڈول ہے. مورکھتا تو چار ہی آدمی ہوتے ہیں, مورکھتا کے کون سے وہ چار مورکھ کون سے ہوتے ہیں, یہ جب اپنے میں بیٹھا ہی میں اے سجنوں, جب تک یہ مورکھتا دور نہیں ہوگی تب تک اس سماج کا اٹھان نہیں ہوگا. عقل میں سب سنسار نگاہ اٹھا کے دیکھ لیو دنیا میں مورکھ مان سکار نگاہ اٹھا کے دیکھ لیو دنیا میں مورکھ مان سکار من میں مورکھ کوئی نہیں ہے من میں مورکھ کوئی نہیں ہے سنسار نگاہ اٹھا کے دیکھ لیو دنیا میں مورکھ مانس ہے. پہلا مورکھ کون سا, ارے پہلا مورکھ ready.